और हमने मूसा और इनके भाई को इशारा किया कि मिस्र में चंद मकान अपनी कौम के लिए मुहैया करो और अपने इन मकानों को किबला ठहरा लो और नमाज कायम करो और अहले ईमान को बिशारा दो। ये आज भी हर उस मुल्क में रहने वाले मुसलमानों को मशवरा जहां अगर मजहब के नाम पे पाबंदी है। तुम्हें बाहर नहीं दीन सीखने देते, तुम्हें बाहर न मस्जिदें नहीं बनाने देते, अपने घरों को मस्जिदें बना लो, अपने घरों को दीनी इदारे बना लो। घर में तो हर एक की मर्जी चलती है, और जब घर किबले रुख नहीं होते ना, और घरों का किबला रुख होना क्या है कि घरों में इस्लाम के मुताबिक इंसान जाए, तो याद रखिए जब घर किबले नहीं बनते तो बाहर के किबलों से फायदा नहीं होता। आज भी आप देखिए कि अल्लाह ताला हमें इसी की दावत देता है और फरमाए अहले ईमान को बशारत दे दो। وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينة। मूसा ने दुआ की है हमारे रब तूने फिरौन और उसके सरदारों को दुनिया की जिंदगी में जीनत और अमवाल से नवाज रखा है, और अब क्या ये इसलिए है कि वो लोगों को तेरी राह से भटकाए। जरा इधर 3 सेकंड गौर करें, आपके बच्चे भी आपसे यही सवाल करते हैं कि अम्मी अगर हम मुसलमान हैं, हम अच्छे हैं, अल्लाह हमें पसंद करता है, मुस्लिम इज द गुड मसलक और रिलीजन, तो फिर हम आज जलील क्यों हैं, हम ऐसे क्यों हैं? और अल्लाह अगर नॉन मुस्लिम को पसंद नहीं करता तो फिर उनके पास इतने अच्छे अच्छे घर क्यों हैं और इनकी गाड़ियां अच्छी क्यों हैं? ये फितना है। देखिए जब हम गैर मुस्लिमों को इन जीनत और अमवाल के साथ देखते तो हम पता क्या सोच लेते हैं कि इनको कुफर की वजह से ये सब मिला। तो आपने ऐसे सवालों का जवाब बच्चों को क्या देना है कि बेटा वो दुनिया में मेहनत करते हैं, उनके रूल एंड प्रिंसिपल्स हैं। और याद रखिए कि अल्लाह का कानून इस दुनिया के लिए मोमिन और काफिर के लिए सेम है। मुसलमान मेहनत करेगा, काफिर मेहनत करेगा, दोनों का रिजल्ट मिलेगा। मुसलमान ऑर्गेनाइज होगा, काफिर ऑर्गेनाइज होगा, सेम रिजल्ट्स हैं। मुसलमान सच बोलेगा, काफिर बोलेगा, सेम। आखिरत के मामले भी फर्क है। तो आज इस दुनिया में जो लोग तरक्की कर रहे हैं ये बातों की बुनियाद पर नहीं कर रहे, मेहनत की बुनियाद पे करें। हम उनसे ही अगर ये कुछ सीख लेना तो कम अज कम हमारी दुनिया तो अच्छी हो जाए। तो लिहाजा ऐसी बात करके मूसा ने कहा, ए रब क्या ये इसलिए है कि वो लोगों को तेरी राह से भटकाए? ए रब इनके माल गारत कर दे और इनके दिलों पर ऐसी मोहर साबित कर दे कि ईमान न लाएं जब तक के दर्दनाक अजाब न देख ले। अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, तुम दोनों की दुआ कबूल हो गई, साबित कदम रहो और इन लोगों के तरीके की हरगिज पैरवी ना करो जो इल्म नहीं रखते। और हमने बनी इसराइल को समंदर से गुजार लिया, फिर फिरौन और इसके लश्कर जुल्म और ज्यादती की गरज से इनके पीछे चले, हत्ता के जब फिरौन डूबने लगा तो बोल उठा। ये लिख लें आखिरी अल्फाज फिरौन के, कुरान ने उसको प्रिजर्व कर दिया, क्योंकि लफ्ज बड़े खूबसूरत है लेकिन मौका चला गया। क्या काला मन तुन्ला इलाजिया मनत बिही बनु इसरा मुस्लिम। आप कहेंगे फिरौन का इंजाम कितना खूबसूरत हुआ, नहीं, इंजाम के बाद क्या बोला, मैंने मान लिया कि खुदावंदे हकीकी इसके सिवा कोई और नहीं जिस पर बनी इसराइली मान लाए, और मैं भी सरे ताज झुका देने वालों में से हूं। लेकिन वही बात है कि बड़ी देर की मेहरबान आते, जवाब सुन लीजिए, आलाना क्या अब ही मान लाता है, हालांकि इससे पहले तो तू ना फरमानी करता रहा और फसाद करने वालों में से था। फल जी कभी बदने, बस आज हम तेरी लाश ही को बचाएंगे ताकि तू बाद की नस्लों के लिए निशाने इबरत बने, अगरचे बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गफलत बरतते हैं। गौर कीजिए, हकीकत है कि वो फिरौन अल्लाह ने जिसकी बात इस आयत में की, इसको नंबर नोट कर लीजिए, ये कुरान की सच्चाई की इतनी बड़ी दलील है कि वो फिरौन जब डिस्कवर हुआ और जिसने उसको डिस्कवर किया और उसकी पट्टियां खोली और उसके जिस्म पे नमक था, जब उसको बताया कि कुरान में आ गया फल यौमन जी का भी बदन का, खालिबन उसका नाम भी कुछ इसी तरह से दिन में आ रहा डॉक्टर का, तो वो मुसलमान हो गया था। कि ये कुरान की सच्चाई की दलील है कि अल्लाह ने फिरौन की लाश को प्रिजर्व किया, आज भी मौजूद है, सारी दुनिया में लेके उसको घूमते हैं, इबरत से नहीं बस शौक से दिखाते हैं, कई कई 100 पाउंड उसकी टिकट है कि आओ इसको देख लो। इबरत के लिए देखते तो 100 पाउंड भी कुछ नहीं था, लेकिन आप देखिए कि लोग निशानियों से गाफिल हैं। आज उसी को हीरो बनाकर पूरी इजिप्शियन तहजीब के ऊपर उन्होंने रखा हुआ है। मैं खुद जाके रह के देख चुकी हूँ, कुरान पढ़े तो जिस फिरौन का जिक्र आता है ना या जिस फिरौन का तस्वर आता है, आज आप इजिप्ट में जाए आपको वो फिरौन नहीं लगता, हर जगह उसकी ममीज लगी हुई, और जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा उनके बच्चे फिरौन को हीरो कहते हैं। ये जवाल की अलामत है उम्मत मुस्लिमा की, चंद बुत सजा के आप कहते हैं ये फला तहसीब फला, वो शिर्क वाली तहसीब है, तो अल्लाह ताला ने उसको प्रिजर्व किया, आज भी मौजूद है और ये कुरान की सच्चाई की एक बहुत अलामत है। वलकत बवान बनी इसराइला, हमने बनी इसराइल को बहुत अच्छा ठिकाना दिया और नहायत उम्दा वसाइल जिंदगी इनको अता किए। फिर क्या हुआ? आप इसको हाईलाइट कीजिए। बनी इसराइल को इतने साल की मुश्किलों के बाद अल्लाह ने एक ठिकाना दिया, मुझे और आपको दिया, बना हमारा अपना मुल्क। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने वहां इख्तलाफ किया, मगर इस वक्त जब इल्म इनके पास आ चुका था। अफसोस की बात है, हम मुसलमानों ने भी अपने लिए जमीन के टुकड़े मांगे, अल्लाह ने दे दिए, मिल गए, अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए। उसके बाद हम किस चीज में पड़ गए? इख्तलाफात में पड़ गए। आज तक एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बन सकी हमारे मुल्कों में, वजह इख्तलाफ। कहाँ कहो, कई जातें बट गई, कहीं सिंधी मुहाजिर और बलोची और पठान का तसव्वुर आ गया, फिर ऊपर गए तो दीन के नाम पे इख्तलाफात हो गए। तो याद रखिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जंग होगी ना ओहदों की, तुम कौन मैं कौन हम कौन, वो कभी नहीं पनपेगी। यहां यही हुआ, बनी इसराइल में फूट पड़ने की वजह ये थी, 12 कबीलों में बट गए थे। इसी का तस्करा यहां आ रहा है, का यकीनन तेरा रब क्यामत के रोज इनके दरमियान फैसला करेगा। किस बात का? जिसमें वो इख्तलाफ करते थे। अब अगर आप इस हिदायत की तरफ से कुछ शक में हैं जो हमने आप पर नाजिल की, तो इन लोगों से पूछ लीजिए जो पहले से किताब पढ़ रहे हैं, फिल वाकई ये तेरे पास हक ही आया है तेरे रब की तरफ से, बस तू शक करने वालों में ना हो जा और इन लोगों में शामिल ना हो जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुठलाया, वरना आप खुद नुकसान उठाने वालों में होंगे। हकीकत है कि जिन लोगों पर तेरे रब का कॉल सच हुआ, इनके सामने ख्वा कोई निशानी आ जाए, वो कभी ईमान नहीं लाते। दुआ करें अल्लाह मैं ऐसे लोगों में ना हूं। अल्लाह कहते सख्त से सख्त आयतें भी इनको पढ़ के सुनाओ ना, इनके दिल नहीं रोते, इनके अंदर वो गुदास नहीं पैदा होता। हाँ, जब तक दर्दनाक अजाब सामने आता ना देखे, तो इनकी आंखों से आंसू निकलेंगे अजाब को देखकर। फिर कैसी कोई मिसाल है कि एक बस्ती अजाब देखकर ईमान ले आई हो और इसका ईमान इसके लिए नफा बख्श साबित हुआ हो? यूनुस की कौम के सिवा इसकी कोई नजीर नहीं। वो कौम जब ईमान ले आई, अलबत्ता हमने इन पर से दुनिया की जिंदगी में रुसवाई का अजाब टाल दिया था और इनको एक मुद्दत तक जिंदगी से फायदा उठाने का मौका दिया। यह है कौम यूनुस, आप कह लीजिए कि एक एक्सेप्शन है कौम यूनुस के साथ। हुआ क्या था कि कौम यूनुस पर अजाब के असरात शुरू हो गए थे। क्यों हुए थे, कैसे हुए थे, ये सूरत अंबिया में हम पढ़ेंगे, लेकिन बस अल्लाह ने अजाब पकड़ लिया। और अल्लाह का एक फैसला है कि जब किसी कौम पर अजाब के असरात शुरू हो जाते हैं, साइंस शुरू, फिर उसको टाला नहीं जाता। लेकिन इस कौम ने जो ही अजाब देखा, इज्तमाई तौबा की, अपने बुत तोड़े, खराबियां छोड़ी, रोते धोते जंगलों में गए, सजदों में गिर गए। ये बात मैंने इतनी क्यों कही, इस वक्त उम्मत मुस्लिमों को इसी की जरूरत है। मैं और आप अपनी जाती तौबा के साथ हालात को बदलता नहीं देख रहे, तो इज्तमाई तौबा की जरूरत है। फिर इंशाल्लाह अल्लाह के आए हुए अजाब टलेंगे और अल्लाह टाल देता है। अल्लाह हमें अपनी जिंदगी में इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। फिर अगर तेरे रब की मर्जी ना होती तो जमीन में सब मोमिन और फरमा बरदार ही हों, तो सारे अहले जमीन ईमान ले आए होते, तो क्या आप लोगों को मजबूर करेंगे कि वो मोमिन हो जाएं? कोई मुतनफ़िस अल्लाह की इजाजत के बगैर ईमान नहीं ला सकता। और अल्लाह का ये तरीका है कि जो लोग अकल से काम नहीं लेते वो इन पर गंदगी डाल देता है। याद रखिए, अल्लाह का ये तरीका है। इनसे कहो आसमानों जमीन में जो कुछ है इसे आंखें खोल कर देखो, और जो लोग ईमान लाना ही नहीं चाहते इनके लिए निशानी और तंबी है, आखिर क्या मुफीद हो सकती हैं? अब ये लोग इसके सिवा और किस चीज के मुंतजिर हैं कि वही बुरे दिन देखें जो इनसे पहले गुजरे हुए लोग देख चुके। इनसे कहो अच्छा इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ, फिर जब ऐसा वक्त आता है तो हम अपने रसूलों को और उन लोगों को बचा लेते हैं जो ईमान लाए, और हमारा यही तरीका है। क्या? हक्कन अलैना नुंजिल मोमिनीन, इसको हाईलाइट कीजिएगा, हम पर हक है कि मोमिनों को बचा ले। अल्लाह ने कल भी मोमिनों को ईमान की वजह से बचाया, हजरत नूह के दौर से लेकर पिछले तमाम अंबिया के दौर में, आज भी अल्लाह का यही तरीका है। जितनी अल्लाह की मदद हम चाहते हैं उतना ईमान लाना पड़ेगा। आप देखिए कि जिस्म की सेहत हो बीमारी हो सब अल्लाह के हाथ में, इसी तरह रूह की सेहत और बीमारी हमारे हाथ में। इस जुमले को मैं बोलती हूँ, लिखिएगा, जिस्म की सेहत और बीमारी अल्लाह के हाथ में, रूह की सेहत और बीमारी हमारे हाथ में। चाहे अपनी रूह को बीमार कर ले चाहे सेहत दिलवा ले। अल्लाह ताला हमें सेहत की तौफीक दे। ए नबी कह दो लोगों, अब भी अगर तुम मेरे दीन के बारे में किसी शक में हो तो सुन लो कि तुम अल्लाह के सिवा जिनकी बंदगी करते हो मैं उनकी बंदगी नहीं करता। ओपन क्लियरली अल्लाह के नबी ने बता दिया, बल्कि सिर्फ इसी जात की बंदगी करता हूँ जिसके कब्जे में तुम्हारी मौत है। मुझे हुक्म दिया गया कि मैं ईमान लाने वालों में से हूँ और मुझको फरमाया गया कि यकसू होकर अपने आप को ठीक इस दीन पर कायम कर दे और हरगिज हरगिज मुशरिकों में ना होना। दुआ करें कि हम भी हनीफ बन जाएं, फोकस्ड, अल्लाह के बनकर किसी दूसरे की तरफ नजर उठाने की कोशिश ना करें और अल्लाह को छोड़कर किसी ऐसी हस्ती को ना पुकारो जो ना तुम्हें फायदा दे सकती और ना नुकसान। अगर आप ऐसा करेंगे तो जालिमों में से हो जाएंगे। और बात क्या है, वहीं यमसस्कुल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हुवा। और अगर अल्लाह तुझे किसी मुसीबत में डाल ले तो खुद इसके सिवा कोई नहीं जो इस मुसीबत को टाल दे। और अगर वो आपके हक में किसी भलाई का इरादा करें तो इसके फजल को फेरने वाला कोई नहीं। वो अपने बंदों में से जिसको चाहता है अपने फजल से नवाजता है और वो दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। आप यहां जरा लिखिए अपनी जिंदगी का कोई ऐसा वाकया याद करें, पूरी कोशिश की आपने कि नुकसान ना हो फिर भी हो गया, कोई चीज याद आई आपको? सोचा कि ये नुकसान ना हो, ये खाना ना जले जल गया, हादसा ना हो गया, बच्चे को तकलीफ ना हो गई, बीमार ना हो बच्चा हो गया, होते हैं कि नहीं? जब कोई ऐसा वक्त आए तो सोच लें ये अल्लाह के हुक्म से हुआ। और आप सोचिए कोई इससे ऑपोजिट, आपकी फैमिली वालों ने, दोस्तों ने, खानदान ने, हसद वालों ने, किसी ने सोचा आपको कोई खैर ना मिले लेकिन आपको मिल गए, ऐसा होता है? बहुत दफा होता है। तो ये अल्लाह देता है। अब मुझे आप बताइए कि हमारा नफा और नुकसान जिस जात के साथ जुड़ा हुआ है हमें उसकी ज्यादा केयर होगी कि उनकी जिनके हाथ में कुछ भी नहीं है? फिर किसका प्रेशर हमारे ऊपर ज्यादा होना चाहिए? अल्लाह का। अल्लाह के प्रेशर में आने वाले दूसरों के प्रेशर से निकल जाते हैं। अब आखिरी आयतों में अल्लाह ताला बड़े प्यार से अपने नबी को तसल्ली देते हैं और मैंने और आपने शायद उस दर्द को महसूस नहीं किया जो इस सूरत के नजूल के वक्त अल्लाह के नबी के दिल पे था। जिस शख्स को हर तरफ से कोई रिजेक्ट करे, इधर गए तो लोगों ने मुंह बना लिया, उधर गए तो आवाज कस दी, उधर गए तो बातें कर दी, कौन सा कुरान आया जी, ये क्या सुना रहे हैं जी, ये क्या आप नई नई बातें कर रहे हैं, तो हम जैसे होते तो डिप्रेशन के मरीज बन चुके होते। लेकिन अल्लाह के नबियों को डिप्रेशन नहीं होता था क्योंकि उनको पता था कि हम ये सब तकलीफें अल्लाह के रास्ते में सह रहे हैं। इसलिए फरमाया कुल या अय्युहन नास कद जाकुमुल हक्कु मिन रब्बिकुम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक आ चुका है। हमारे पास आए कुरान सुनते वक्त आपको यकीन आता कि ये हक है? फिर आपको इस आयत में मुखातिब किया गया। अब जो सीधी राह इख्तियार करे इसकी रास्त रवि इसी के लिए मुफीद है और जो गुमराह रहे इसकी गुमराही इसी के लिए तबाह कुन है और मैं तुम्हारे ऊपर कोई हवालेदार नहीं हूं। और ऐ नबी तुम इस हिदायत की पैरवी किए जाओ जो आपकी तरफ बजरिए वही भेजी जा रही है और सब्र करो यहां तक कि अल्लाह फैसला कर दे और वही बेहतरीन फैसला करने वाला है। तो ये थी सूरत यूनुस